जनाब मजहर अब्बास साहब का कॉलम नवाज शरीफ तारीख के कठेरे में 26 जनवरी 2022 को रोजनामा जंग में शाया हुआ आपके पेश खिदमत है। ये इन दिनों की बात है जब एक नौजवान इत्तेफाक इंडस्ट्री में वहां के माली मामला देखता था और शाम को बाग जिना में क्रिकेट खेलता था। अचानक मैच के दौरान पैगाम दिया गया कि गवर्नर पंजाब आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं क्रिकेट की यूनिफॉर्म में हूँ। जवाब आया कोई बात नहीं। इस वक्त जनरल गुलाम जीलानी पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। इस नौजवान से दो चार सवाल किए और खुशखबरी सुनाई कि आपको पंजाब का वजीर खजाना बनाया जाता है। इस नौजवान का नाम था नवाज शरीफ, जिसको शायद उस वक्त सियासत की ABC भी नहीं आती थी। बहरहाल ये उनकी सियासी जिंदगी की पहली इनिंग थी। ये इन दिनों की बात है जब इमरान खान क्रिकेट का रोशन सितारा था। क्रिकेट खेलने वो कभी कभी इस ग्राउंड में आता और फिर एक बार मियाँ साहब से मुलाकात भी हो गई। आज ये दोनों सियासत में एक दूसरे के हरीफ हैं और इख्तलाफात नफरत की हद तक मौजूद हैं। मियाँ साहब 3 बार वजीर आजम रहे, पंजाब के वजीर आला भी रहे, जबकि इमरान की 23 साल सियासत में वो इसका खास शिकार भी रहे। गो के 2007 में एक ऐसा वक्त भी था जब दोनों इत्तेहादी भी थे। तारीख मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कैसे याद रखेगी, एक मुजरिम नाअहल और करप्ट सियासतदान के तौर पर या एक मकबूल सियासी रहनुमा के तौर पर? कानून के अपने फैसले होते हैं, तारीख के अपने, मगर तारीख में जिंदा रहने के लिए कभी कभी जुल्फकार अली भुट्टो बनना पड़ता है। इस वक्त नाअहल और मुजरिम होने के बावजूद मियाँ साहब की सियासी गिरफ्त पंजाब में खासी मजबूत है और यही वजीर आजम इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए उनकी तकरीरों में अदलिया से नाराजगी भी है और सियासी परेशानी भी। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के नतायज अगर जिमनी इलेक्शन की तरह के हुए तो धचका कप्तान के पूरे बयानिए को लगेगा, जबकि फतह की सूरत में वो कबल वक्त इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। मियाँ साहब की सियासत में क्रिकेट एम्पायर और सिलेक्टर्स का बड़ा हाथ है। उस वक्त की सिलेक्शन टीम में जनरल ज़ियाउल्लाह, ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम, जनरल इकबाल और मजीद निज़ामी साहब शामिल थे, जिन्होंने बड़े मियाँ साहब से ये दरख्वास्त की थी कि आप अपने बड़े बेटे को सियासत में आने दें। और मियाँ शरीफ से ये भी कहा गया, हम चाहते हैं कि आप कारोबार भी करें और सियासत भी। साथ ही उन्होंने भुट्टो साहब के ज़माने में कौमी आई गई इत्तेफाक फैक्ट्रियाँ भी वापस मिल गई। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ ने सियासत का आगाज जनरल जीलानी की उंगली पकड़ कर चलने से किया और हर बच्चा बड़ा होकर खुद चलता और अपने फैसला खुद करता है। मियाँ साहब ने भी यही किया तो बड़े नाराज हो गए। अब सवाल ये है कि जिस खानदान का सियासत से कोई लेन देन नहीं था, उसको ज़बरदस्ती सियासत में क्यों लाया गया? क्योंकि मकसद दूसरे सियासी खानदान को सियासी तौर पर ख़त्म करना था। मियाँ साहब की सियासी तरबियत में जनरल हमीद गुल और हुसैन हक्कानी का भी काफ़ी हाथ है। वो खासा अरसा इन साजिशों का हिस्सा रहे जो दरअसल दूसरे सियासी हरीफ को नाकाम बनाने के लिए तैयार की जाती रही हैं। जनरल ज़िया ने इन्हें सिर्फ भुट्टो या PPP के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अपने ही नामजद करदा वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। उस वक्त तक बड़े सियासी फैसले मियाँ शरीफ किया करते थे। इस दौरान शहबाज शरीफ भी सियासत में आना चाहते थे और 1990 में वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाहिशमंद थे, मगर फैसला गुलाम हैदर वाइन के हक में आया और इन्हें मजीद इंतजार करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ नवाज शरीफ ने फैसले खुद करना शुरू कर दिए, जिसमें पहला बड़ा फैसला 1993 में डिक्टेशन ना लेने का था। उनकी इस तकरीर ने उनको इब्तदाई तालीम देने वालों को भी परेशान कर दिया। फिर उन्होंने शहबाज शरीफ पर तवज्जो देना शुरू कर दी और आज इन कुव्वतों की नज़र में वो बड़े भाई से ज़्यादा काबिल एतमाद हैं, मगर वो भाई के फैसलों के खिलाफ जा नहीं सकते और यही असल मुश्किल है। 1992 में पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप जीता तो इमरान खान कप्तान थे और इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल हीरो। یہ وقت تھا جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ٹیم سے ملاقات بھی کی اور اس سے خاصا نوازا بھی۔ عمران کرکٹ سے ریٹائر ہوئے اور شوکت خانم کینسر اسپتال کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا تو میاں صاحب نے بھی مدد کی۔ اس دوران جل حمید گل نے ان کو سیاست میں آنے کا مشورہ دیا۔ عمران کا دھیان بھی اس طرف گیا مگر پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی 3 سال بعد یعنی 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے شریف خاندانی خوفزدہ ہوا، کیونکہ انہیں اس کی مقبولیت کا بھی اندازہ تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والوں کا بھی۔ ہماری سیاست کا محور آرٹ امپائر سلیکٹرز ہی رہے ہیں، بس ٹیم اور کپتان بدلتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میاں صاحب نے سیاست میں بڑی غلطیاں بھی کی اور غیر ضروری تنازعات میں بھی خود کو ڈالا، جس میں شاید سب سے بڑی غلطی 1997 میں 2/3 اکثریت کے باوجود فوج اور عدلیہ سے اختلافات، امیر المومنین بننے کی خواہش اور پھر 12 اکتوبر 1999 کے بعد ڈبل ڈیل کر کے باہر جانا تھا۔ پاناما کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اگر اس وقت میاں صاحب استعفیٰ دے دیتے تو بات نہیں آگے نہ جاتی۔ ان کی سیاسی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں مگر اس وقت ان کا باہر رہنا انہیں سیاسی نقصان پہنچا رہا ہے۔ سیاست اور تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنا ہوتے۔ بھٹو کے آخری دنوں میں انہیں این آر او کی پیشکش ہوئی تھی، ترکی جا سکتے تھے۔ بیگم بھٹو ملنے گئی تو ایک ہی جملہ آخر میں کہا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔